SBS Audio is supported by advertising.
Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
आप सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड, SBS ऑडियो पॉडकास्ट जो आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने के तरीके में मदद करता है। IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑस्ट्रेलिया में कई लोगों के लिए माता पिता बनने का एक रास्ता है। कुछ लोगों के लिए फर्टिलिटी की समस्याओं को दूर करने में मदद करता है और दूसरों के लिए जैसे समलैंगिक जोड़ों या किसी एकल के लिए अपना परिवार बनाने का रास्ता खोलता है। क्योंकि IVF को अलग अलग राज्यों क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से रेगुलेट किया जाता है, इसलिए ये प्रक्रिया शुरू में मुश्किल लग सकती है। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के इस अंश में हम बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में IVF कराने का फैसला करते समय क्या उम्मीद रखनी चाहिए, और मैं हूँ अनीता बरार। जब 1978 में UK में दुनिया का पहला IVF बच्चा पैदा हुआ तो इसने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का भविष्य बदल दिया। आज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल दुनिया भर में बड़े पैमाने पर किया जाता है और ऑस्ट्रेलिया उन देशों में है जहां प्रति व्यक्ति IVF साइकिल की दर सबसे अधिक है। प्रोफेसर जॉर्जिना चैम्बर्स यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में नेशनल पेरिनेटल एपिडेमियोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स यूनिट की डायरेक्टर हैं। वो ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड असिस्टेंट रिप्रोडक्शन डेटाबेस, जिसे एनजार्ड के नाम से जाना जाता है, उसकी भी देखरेख करती हैं। प्रोफेसर चैम्बर्स का कहना है कि ये नेशनल रजिस्ट्री ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किए गए हर IVF साइकिल को ट्रैक करती है।
So we get 100% of cycles reported to us because otherwise they would not be in accordance with their code of practice and their licensing agreement. So we have a very rich amount of data to produce statistics on, to undertake research, to inform the public, and to populate the yourivfsuccess.com.au website, which is a website for people to find out about IVF treatment in Australia.
इकट्ठा किया गया डेटा yourivfsuccess.com.au पर जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा फंडेड एक वेबसाइट है और फर्टिलिटी क्लिनिक से स्वतंत्र है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स जानकारी इकट्ठा करती है और इसे आम लोगों के लिए आसान तरीके से उपलब्ध कराती है। इस साइट पर विजिटर राष्ट्रीय IVF आंकड़ा देख सकते हैं और अपनी स्थिति के हिसाब से इंटरैक्टिव टूल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें से एक टूल IVF करवा रही महिलाओं को बच्चा होने की संभावना का पता लगाने में मदद करता है। प्रोफेसर चैम्बर्स का कहना है,
And that's an online calculator that allows people to enter information about themselves, such as their age, their partner's age, their diagnosis if they've got one, any previous history of IVF treatment that they've had, and then they can get a personalized individual estimate of their chance of having a baby through IVF.
Australia ke sabhi clinics ke liye IVF success rate bhi online database ke zariye logon ke liye uplabdh hai. Petra Vail ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की फर्टिलिटी सोसाइटी की अध्यक्ष हैं। वो क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी से हैं। उनका कहना है कि सक्सेस रेट तो बस तस्वीर का एक हिस्सा है।
What matters just as much, if not more, is the level of personalized care, the transparency, the scientific rigor, and the support services that are available. Patients really need to know that it's okay to ask clinics about their approach to patient care. How do they tailor the treatment for this patient, and how do they support people when things don't go to plan? Or in this particular audience, you know, how do they tailor for multicultural differences and requirements?
IVF समेत fertility treatment महंगे हो सकते हैं। अधिकतर लोगों को अपने private health insurance से पूरा या कम से कम कुछ खर्च तो देना होगा। योग्य लोगों को मेडिकेयर रिबेट भी मिल सकता है और आपके राज्य या क्षेत्र की हेल्थ सर्विसेज भी सरकारी फंड वाली सर्विसेज दे सकती हैं। ये समझने के लिए कि आपके लिए क्या सपोर्ट उपलब्ध है, अपने डॉक्टर से बात करना बहुत आवश्यक है। एसोसिएट प्रोफेसर एलेक्स पॉलिएकॉफ, जो विक्टोरिया में पब्लिक हेल्थ सिस्टम के माध्यम से फर्टिलिटी सर्विस देने वाली एक सर्विस प्रोवाइडर के सीनियर फर्टिलिटी कंसल्टेंट हैं, उनका कहना है कि IVF ही एकमात्र विकल्प नहीं है।
And so there is a unit called the Public Fertility Service, which accepts referrals from GPs. And then patients come in and have all the investigations. And that is usually followed by treatment, whatever is required. For example, they provide ovulation induction, they provide intrauterine insemination and IVF service.
चाहे आप public provider चुने या private clinic, तरीके आमतौर पर एक जैसे होते हैं. Family doctor से referral, फिर फर्टिलिटी क्लिनिक में आपकी विजिट, आपकी हिस्ट्री और कई मेडिकल एग्जामिनेशंस। पूरी प्रक्रिया में लोगों को स्पेशलिस्ट की एक टीम सपोर्ट करती है। आपके राज्य या क्षेत्र के हिसाब से IVF जैसे असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट के लिए फर्टिलिटी काउंसलिंग कानूनन आवश्यक हो सकती है, खासकर उनमें जिनमें स्पर्म या एग डोनेशन या सैरोगेसी शामिल हो। इस काउंसलिंग का खर्च ट्रीटमेंट फीस में शामिल होता है। एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिएकॉफ का कहना है कि इस तरह की काउंसलिंग का एक खास फोकस होता है।
It's more counseling as to what happens if, for example, a couple creates embryos and then they split up. What happens to those embryos? What would you like to happen? These sort of things.
फर्टिलिटी सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के डॉक्टर वाले कहते हैं कि चाहे ये ज़रूरी नहीं होता तब भी काउंसलिंग मदद का एक आवश्यक माध्यम हो सकता है। ये आपको अपने और अपने परिवार के फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान होने वाले किसी भी संभावित नतीजे को समझने और उसके लिए तैयार रहने में काउंसलिंग मदद करती है। और इससे पहले कि इस जानकारी को हम विराम दें, याद रखें कि इनफर्टिलिटी आम बात है, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है।
It's experienced by every aspect of our society and every culture and every ethnicity, and the right to have a family is a fundamental right, and somebody's desire to pursue that right should be encouraged and supported.
ये एक SBS ऑडियो पॉडकास्ट था। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के और दूसरे पॉडकास्ट के लिए sbs.com.au/australiaexplained पर जाएं।
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.